नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज अंतिम बैठक। ठेकेदारों की देनदारियों में देरी, भर्ती प्रक्रिया और हिमकेयर जैसे मुद्दों पर तप सकता है सदन। शिमला जिला के सुनी क्षेत्र में 15 दिसंबर से कोल डैम प्रबंधक सोनार तकनीक से करवाएगा सिल्ट सर्वेक्षण। सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लगे बीएलओ पर कार्यभार कम करने के निर्देश किए जारी। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते ठंड में लगातार इजाफा। साफ मौसम के चलते मनाली रोहतांग सड़क पर 10 दिसंबर तक वाहनों की आवाजाही फिर शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज अंतिम बैठक होगी। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें ठेकेदारों की पेमेंट में देरी, भर्ती प्रक्रिया, संस्थानों को बंद करने, हिमकेयर योजना, आबकारी नीति सहित कई अन्य अहम मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा गया है। नियम 62 के तहत 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ धर्मशाला से हमारे विशेष संवाददाता।
शीतकालीन सत्र के 7 दिन काफी हंगामेदार रहे हैं। विपक्षी दल भाजपा ने जहां सदन के भीतर कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया, वहीं बीते रोज सदन के बाहर भी सरकार के 3 वर्षों के कार्यों को लेकर बड़ी रैली कर हमला बोला। सरकार के व्यवस्था परिवर्तन के नारे को हिमाचल में व्यवस्था पतन बताते हुए 2027 में सरकार को बदलने का कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सत्र के अंतिम दिन भी आज सदन का माहौल गर्म रहने के आसार हैं। ठेकेदारों की देनदारियों सहित संस्थानों को बंद ने भर्ती प्रक्रिया और हिमकेयर योजना जैसे मुद्दे प्रमुखता से गूंज सकते हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, धर्मशाला।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार खिलाड़ियों द्वारा डोपिंग व मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए डोपरोधी कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा संसद में इस संबंध में उठाए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। मनसुख मांडविया ने बताया कि डोपरोधी कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में चलाए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2024 में 7,774 की तुलना में इस वर्ष 7,751 नियंत्रण परीक्षण करने की योजना है। शिमला जिला के सुनी क्षेत्र में सतलुज नदी में बढ़ते जलस्तर और गाद के मामले को लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने कहा कि सुनी क्षेत्र में कोल डैम प्रबंधन की ओर से सिल्ट के ऊपर सोनार सर्वेक्षण करवाया जा रहा है, जो 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 दिनों में सर्वेक्षण कार्य पूरा होगा, जिसके आधार पर सुनी क्षेत्र में भविष्य के लिए रणनीति बनाई जाएगी।
जब बारिश तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर पानी का जो वॉल्यूम होता है वो इतना ज्यादा होता है कि उसमें जो बहाव होता है उसमें तो हमें कोई रिएक्शन का भी टाइम नहीं मिल पाता। तो वो सारा जो एक मसला बड़ा गंभीर मसला है। अगर एग्जिस्टेंस हम सबको अपना रखना है तो कहीं ना कहीं जो है हमें मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ती है कुछ चीजों में। हमारे लिए सबसे बड़ी है लोगों की लाइफ जो है फुली प्रोटेक्ट रहनी चाहिए, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी की खेती बाड़ी को नुकसान नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होगी उसको जिस भी हाईएस्ट लेवल पे ले जाकर के बात करनी होगी, उसी के पैरामीटर की प्रिलिमिनरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं।
इस बीच प्रभावितों का कहना है कि बरसात के समय सतलुज नदी में अधिक गाद आने से पानी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने समय रहते प्रशासन से सोनार सर्वेक्षण और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग भी की है।
सिल्ट की प्रॉब्लम कम से कम 3-4 साल से स्टार्ट हुई, बहुत ही भयानक तरीके से सब जगह सिल्ट भर जाती है और पानी भर जाता है सारा, और घरों को नुकसान होता है, जमीनों को नुकसान होता है, लोग परेशान रहते हैं। कम से कम 4 महीने तक तो पानी रहता है और सिल्ट भी अंदर घरों के लिए घुस जाती है। कोल डैम रिक्वायर करे इस जमीनों को और जिनके घर है, तो मैं तो प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूँ।
गौरतलब है कि सोनार सर्वे एक ऐसी तकनीक है जो ध्वनि तरंगों का उपयोग कर पानी के नीचे वस्तुओं का पता लगाने, मानचित्रण करने और सर्वेक्षण करने के लिए की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान में लगे बूथ स्तरीय अधिकारियों BLO पर कार्यभार कम करने के लिए कई निर्देश जारी किए। शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकारों को उनके काम के घंटों को अनुपातिक रूप से कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती पर विचार करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों और राज्य चुनाव आयोग द्वारा तैनात कर्मचारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य है। इसलिए जब भी बीएलओ को कठिनाइयों का सामना करना पड़े राज्य सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए। न्यायालय ने इस संबंध की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह समयबद्ध तरीके से कर्तव्य का पालन नहीं करने वाले बीएलओ के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई न करे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। शिमला की बहुचर्चित संजौली अवैध मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी को प्रदेश उच्च न्यायालय का बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने नगर निगम शिमला कमिश्नर की अदालत के 5 अक्टूबर 2024 के फैसले को बरकरार रखते हुए मस्जिद की दूसरी, तीसरी व चौथी मंजिल गिराने के आदेश दिए हैं, जिसको खुद वक्फ बोर्ड ने भी अवैध माना है और याचिकाकर्ता ने न्यायालय में अंडरटेकिंग भी दी है। न्यायालय ने 4 सप्ताह में नगर निगम से भी जवाब मांगा है। धरातल व पहली मंजिल को लेकर मामले की सुनवाई 9 मार्च होगी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कोतवाली बाजार धर्मशाला स्थित होटल धौलाधार में देर सायं आग लगने की एक घटना में होटल में रखा कीमती सामान जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि इस अग्निकांड में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। होटल के कर्मचारियों ने सतर्कता बरतते हुए पर्यटकों समेत अन्य लोगों को भी बाहर निकाला। HPTDC के AGM ने इस घटना में करोड़ों रुपए के नुकसान की बात कही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आकांक्षी जिला चंबा को भरपूर लाभ मिल रहा है। जिले में इस रबी मौसम के लिए गेहूं और जौ की फसलों का बीमा करने की प्रक्रिया इन दिनों जारी है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिला चंबा के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस वर्ष भी जिला के किसानों को इस योजना का लाभ देने के लिए उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने किसानों का आह्वान किया है कि वह किसी भी लोक मित्र केंद्र, जन सेवा केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा सरलता से करवा सकते हैं। बीमा योजना के तहत रबी मौसम की फसल आलू का बीमा 31 जनवरी 2026 तक, लहसुन का 14 दिसम्बर और सेब का 20 दिसम्बर तक बीमा करवा सकते हैं। उपायुक्त ने कृषि विभाग, बीमा कंपनी और सभी बैंकों से आपसी समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
प्रदेश के चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में आज बादल छाए हुए हैं। हालांकि राजधानी शिमला सहित अन्य मैदानी इलाकों में आज दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई है। पिछले कई दिनों से तापमान में लगातार आ रही गिरावट से लोगों को शुष्क ठंड का सामना करना पड़ रहा है। चंबा जिला में सर्दियों के मौसम के दौरान किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इधर साफ मौसम के चलते मनाली से रोहतांग सड़क पर आगामी 10 दिसंबर तक के लिए वाहनों की आवाजाही फिर शुरू कर दी गई है। इस सड़क के खुल जाने से देश विदेश से आए पर्यटकों को रोहतांग दर्रे पर पड़ी बर्फ व प्राकृतिक सुंदरता के दीदार का अवसर एक बार फिर मिलेगा। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर अमर उजाला की सुर्खी है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ऊना, राज्य सूचना आयोग धर्मशाला होगा शिफ्ट। जबकि दैनिक जागरण का शीर्षक है, किसी को लाभ या दंड नहीं, शिमला की भीड़ को कम करना प्रदेश सरकार का लक्ष्य। दैनिक भास्कर के शब्द है, धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में भाजपा के कार्यकर्ता जुटे, सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज अंतिम बैठक, ठेकेदारों की देनदारियों में देरी, भर्ती प्रक्रिया और हिमकेयर जैसे मुद्दों पर तप सकता है सदन। शिमला जिला के सुनी क्षेत्र में 15 दिसंबर से कोल्ड डैम प्रबंधन सोनार तकनीक से करवाएगा सिल्ट सर्वेक्षण। सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लगे बीएलओ पर कार्यभार कम करने के किए निर्देश। और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते ठंड में लगातार इजाफा, साफ मौसम के चलते मनाली रोहतांग सड़क पर 10 दिसंबर तक वाहनों की आवाजाही फिर शुरू। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।